कौन है मनोजर?
तुम्हारे भाई साहब हैं, इतनी रात को कारखाने गए हुए हैं।
कारखाने किस लिए?
खुदा ही जाने, कह रहे थे कि अपना सामान वगैरह समेटना चाहते हैं, पता
तो उसे
नहीं।
यहां आने का क्यों नहीं कहा?
कहता भी तो ना मानता, अलबत्ता गलत भी नहीं कर रहा है। उसकी जगह मैं भी होता तो इतने हवादिस के बाद अपनी फैमिली से आंख नहीं मिला सकता था।
ये तो ठीक नहीं है। मेरा बेटा इस सर्दी में सड़कों पर मारा मारा फिर रहा है, क्यों ना उसे लाने चले।
कोई फायदा नहीं अम्मी जान, जब तक हम कारखाने पहुंचेंगे वो जा चुका होगा। अरे देखो आदमी कैसे खुद को भी अजियत दे रहा है और हमें भी मुसीबत में मुब्तला कर रहा
मैं
है।
तो कहती हूँ ताया के घर चलते हैं, बाहर से बात करते हैं। वो समझदार और मंतकी लड़की है, अगर बड़े वास्ता बनेंगे तो शायद वो अपनी जिद छोड़ देगी और सब कुछ ठीक हो
अरे सुरेया
जाएगा।
तुम भी कैसी बातें कर रही हो, अगर बाहर की जगह तुम होती तो क्या माफ कर देती? अगर मुझसे ऐसी हरकत सरजद हुई होती तो क्या तुम दरगुजर करती? नहीं करती ना। अरे अम्मी जान आप लोग इस बात को छोटा मत समझें, बहुत बड़ी बात है। उसको अपने शरीक हया से धोखा मिला है, दिल टूटा है उसका, इतनी आसानी से माफ नहीं कर सकती।
देखो आजमाने में तो कोई हर्ज नहीं है ना, हाथ पर हाथ धरकर बैठने से और उनकी जिंदगी को तबाह होते देखने से तो बेहतर है।
अरे मैं किस मुंह से बाहर जाऊं, किस मुंह से बाहर से कहूं कि बेटा सब कुछ भूल जाओ।
हाँ ना, हो ही नहीं सकता। इस तरह से शायद आपके देखने से उसका गम ताजा हो जाए। मेरे ख्याल में तहम्मुल से काम लेना चाहिए, जब मसला कुछ ठंडा हो जाएगा उस वक्त जाके उससे बात कर लेंगे।
तुम भी इस मसले में कोई बेकसूर नहीं हो, अगर उस वक्त बात पर पर्दा ना डालते तो आज नौबत यहां तक ना पहुंचती।
अरे बेगम कितनी दफा बताना पड़ेगा, मैंने उस वक्त इसलिए बात छुपाई थी कि झगड़ा खत्म हो जाए। हम तो नेकी करने चले थे, उल्टे मुसीबत सर पड़ गई हमारे।
तुम अगर अखलाकियात के पाबंद होते तो हर बार जाके कारखाने में बेहजाद की जगह लेने की कोशिश न करते।
अम्मी आप मुझसे कह रही हैं मैंने बुरा किया जो बहजाद के फायदे के लिए काम करता रहा? अरे मैं उस कारखाने में इसलिए रुका हूं कि बहजाद के वापस आने का रास्ता खुला रहे, वह आ सके वहां।
मनुचर साहब, इस झगड़े की दोनों तरफ आग है, ऐसा ना हो कि ना इधर के रहो ना उधर के।
अम्मी जान सॉरी। देखा अम्मी जान ने मुझे क्या कहा, मुझे बाकायदा तौर से धमकी दे डाली। मैं कहाँ जाकर अपना सर फोड़ूं? अरे इतना भी ख्याल नहीं कि मैं एक कारखाने का इंचार्ज हूं? ये बात करने का कौन सा तरीका है? ये सब तुम्हारा कसूर है, सब तुम्हारा कसूर है। 100 दफा कह चुका हूं कि आओ यहां से अपना बोरिया बिस्तर बांध कर ऐसी जगह चलते हैं जहां हमारी कोई बेइज्जती ना करे कम से कम।
मनोजय क्या कह रहे हो, अम्मी गुस्से में थी, एक बात कर गई। सच ही तो कह रही थी कि तुम भी बेकसूर नहीं हो, बार बार जाने को कह रहे हो, किसने रोका है? जाओ जहां जाना है तुम्हें।
जाऊं? सुरैया तुम बेमुरव्वत हो, कहां जाऊं? तुम तो जानती हो तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है। अगर मुझे अकेले की बात होती तो मुझे तो कहीं से भी रोटी का एक टुकड़ा मिल ही जाता। तुम्हारे ख्याल में मैं किसके लिए यह जिल्लत बर्दाश्त कर रहा हूं? अगर तुम्हारे भाई इतना मुझे सुनाते हैं और मैं चुप रहता हूं तो किसके लिए? तुम्हारी खातिर है सुरैया, हमारी जिंदगी की खातिर, मुस्तकबिल की मुझे फिक्र है इसलिए।
देखो मनोजर, मैंने तो कोई बात नहीं की ना, मैं कहती हूँ जरा इस मामले को थोड़ा ठंडा होने दो, फिर दोनों बैठकर फैसला कर लेते हैं कि क्या करें और क्या ना करें। ठीक है? ठीक है मनोजर।
ठीक, मुझे किसी के काम से कोई गरज नहीं है, जो तुम्हारा दिल चाहे करो। सुरैया
बोलो।
मुझे सुबह जल्दी जगा देना, कारखाने जाना है, क्योंकि अब मेरी जिम्मेदारी और भी संगीन हो गई है। जाके मजदूरों को देखना पड़ेगा ताकि काम चोरी ना करें।
ठीक है चीफ एग्जीक्यूटिव साहब।
अरे बेगम कौन से चीफ एग्जीक्यूटिव, हमने तो कब से दुनिया को 3 तलाक दे दी और रुख्सत कर दिया।
बिल्कुल ठीक।
किसी से माफी मांगने की पहली शर्त इजहार पशिमानी है। तुम बाहर से माफ करने की तवक्को नहीं रख सकते जब तक कि तुम इस बात को साबित ना कर दो कि अपने किए पर तहे दिल से पशिमान हो।
पुपी जान, बात पशिमानी की नहीं है, बात खयानत की है। मानता हूं कि मैंने गलती की है, बेवकूफी की है, ठीक है, लेकिन इतनी जुरत रखता हूं कि उसके सामने जाकर कहूं कि मैंने गलती की है, माफ कर दो। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होगी। वो समझते हैं कि मैंने अब्बा का इंतकाम लेने के लिए सब कुछ किया है और अब वो चचा की मौत का जिम्मेदार मुझे ठहराना चाहते हैं।
अच्छा ठीक है, तुम खाना खाओ। अफसोस सद अफसोस, अगर पहले ही दिन जाके सब कुछ तुमने बाहर को साफ साफ बता दिया होता तो ये परेशानियां सामने ना आती।
फूफी जान, मैंने अगर कुछ नहीं बताया तो सिर्फ इसलिए कि इन दो घरानों के दरमियान फिर से तलखियां ना पैदा हों। उस दिन अस्पताल में भी अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे कहा था कि खामोश रहें, वो भी सिर्फ इसी वजह से, वरना और कोई मतलब नहीं था।
प्लीज मुझे अपनी गलती याद मत दिलाओ। कम से कम मुझे इस बात की समझ होनी चाहिए थी कि जो जिंदगी झूठ से शुरू हो उसका अंजाम अच्छा नहीं होता।
फूफी जान, मैंने झूठ नहीं कहा है, मैंने सिर्फ पूरी हकीकत नहीं बताई है। इसमें और झूठ में बहुत फर्क है।
बेजाद बेटा, ये तुम्हारा ख्याल है, ये बाहर का ख्याल नहीं है। मेरे ख्याल में तुम जुर्रत का मुजाहरा करके इस सिलसिले में अपनी जिम्मेदारी कबूल करो।
मैं क्या करूं?
इतराफ करो, मुतवाजे रहो, सर नीचे रखो और जितना हो सके कोशिश करो कि बाहर को दोबारा राजी कर लो।
बाहर को भी राजी कर लिया, चची जान का क्या करूंगा? इस वक्त मेरी और बाहर की तकदीर चची के हाथ में है।
तकदीर खुदा के हाथ में होती है, बंदों के हाथ में नहीं।
वो तो ठीक है।
तुम खाना खाओ, मैं कल बाहर से मिलने जाऊंगी, शायद उससे बात कर सकूं। खुदा करे मेरी बात मान ले।
ये सनद तो हिसाम फुरुजान फर के नाम है।
हाँ बिल्कुल, लेकिन उनकी फैमिली ने मुझे अथॉरिटी लेटर दिया है।
ऐसा नहीं हो सकता, मरहूम के वरसा को खुद आना होगा।
लेकिन राफी साहब, मेरे पास अथॉरिटी लेटर है, वरसा के आने की क्या जरूरत है?
क्या मैं देख सकता हूँ?
जी एक मिनट रुकिए। ये लीजिए।
तशरीफ रखें, कुछ खा क्यों नहीं रहे हैं?
बहुत शुक्रिया। उनको तुम पर बहुत भरोसा था जो ये अथॉरिटी लेटर तुम्हें दिया।
हाँ बहुत भरोसा था।
अच्छा तो इंजीनियर साहब, अगर कोई एतराज ना हो तो मैं काम के मुकदमा शुरू करूं।
असल में मेहरान भाई, मैंने आज तक किसी को जाली रसीद नहीं दी। मुझे गैर कानूनी काम भी अच्छा नहीं लगता। तुम चाहे से जो भी नाम दो, माफ कर दो, मेरे ख्याल में ये एक तरह का फ्रॉड है।
बहुत शुक्रिया आपका रफी साहब, आपने हमें फ्रॉडिया भी बना दिया।
इंजीनियर साहब, मैंने तो आपको पूरा किस्सा साफ और तफसील से सुनाया था।
हाँ आपने वजाहत की, लेकिन मैं खाने नहीं हुआ। आप कारखाने में सामान लगाना चाहते हैं तो ठीक है, इसके लिए इतने साजोबाज की जरूरत नहीं है। मैं आपके साथ एक कानूनी कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूँ और आपका सारा सामान चीन से दरामद कर देता हूँ, मसला हल हो जाएगा।
इत्तेफाक से ये तजवीज़ भी बहुत अच्छी है, लेकिन मैंने फिलहाल गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स बनाने का इरादा तर्क कर दिया है। मैं अपने असल पेशे की तरफ जाना चाहता हूँ जिसमें मुझे महारत है। नेखा साहब को सब पता है।
जी फरूजान फर साहब ने फैसला किया है कि अपना पेशा बदल लें और अपना पुराना और असली काम प्रिंटिंग और इश्तहारात शुरू करें।
मैं समझ रहा हूँ
इंजीनियर
लेकिन...
साहब मैं हैरान हूँ कि आपने इतनी एहतियात के बावजूद कैसे इतना पैसा इकट्ठा कर लिया है।
अकल कहती है कि एहतियात जरूरी है।
आप फिक्र ना करें इंजीनियर साहब, मुझे भी कानून का पता है। इत्मीनान रखें, अगर मुझे 1% भी खतरे का एहतमाल होता तो इस काम में हाथ ना डालता। अब क्या करना चाहते हैं, काम करेंगे कि नहीं?
ठीक है, आप इस सनद को बैंक ले जाएं, अगर बैंक ने माना तो मैं भी मान लूंगा।
ठीक है, तो फिर तय हो गया, सिर्फ रहते हैं एग्रीमेंट पर दस्तखत करने, तो आप दोनों इस पर दस्तखत की जहमत करें।
एग्रीमेंट?
परेशान ना हो, यह सिर्फ फरुजान फर साहब के लिए एक जमानत है कि वो बेफिक्र रहे। आप कब बैंक से चेक लेके उनके हवाले करेंगे?
उनको बताया है कि चेक मेरे नाम पे होना चाहिए।
जी बिल्कुल जनाब, आप सिर्फ इतनी मेहरबानी करें कि तमाम लोन के 80% रकम के बराबर एक चेक लिख के फरुजान फर साहब को दे दें, ताकि उन्हें भी इत्मीनान रहे और वो परेशान ना हो।
ठीक है, जैसा आप कहें मेहरान भाई।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
ये लीजिए।
ये तो फल तो खाइए आप।
ये लीजिए।
आपकी बड़ी मेहरबानी, मुबारक हो जनाब। ये फ्रूट हलाल पैसों से आया है।
मुबारक हो।
खाइए इसको, बिल्कुल खाइए।
السلام علیکم۔
السلام علیکم فاطمہ بہن۔
پرسکون رہے، پرسکون، پریشانی نہ کوئی۔ السلام علیکم، ٹھیک ہو؟
میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟
پرسکون
رہو۔ اس بے وقوف لڑکے نے جا کے چپکے سے شادی کر کے بیوی کو طلاق بھی دی ہے، اپنی اور بہار کی زندگی برباد کی ہے۔ اب میں کس منہ سے بہار کے پاس جاؤں اور اس سے کہوں کہ میرے بیٹے کو معاف کر دو؟
جانتی ہوں کہ مشکل کام ہے، لیکن ہم سب کو کوشش کرنی ہوگی تاکہ ان دونوں کی زندگی برباد نہ ہو۔
ایک پاگل کنویں میں پتھر پھینکتا ہے اور 100 عاقل اسے نہیں نکال سکتے۔ اگر اسی وقت جب ہم نے کہا کہ لڑکی ہمارے قابل نہیں ہے ہماری بات مان لیتا، اس وقت ان لوگوں کے سامنے سر جھکانے پر مجبور نہ ہوتے ہم۔
سریا بیٹی، پرسکون رہنے کی کوشش کرو، اس وقت وہ لوگ غصے میں ہیں، البتہ حق بجانب بھی ہیں۔
جی
اگر خدا نہ خواستہ انہوں نے آپ کوئی توہین کی تو ہمیں برداشت کرنا ہوگی، ٹھیک ہے؟
آپ صحیح کہہ رہی ہیں۔
تو آپ ایسا کریں کہ یہیں پر رکیں، شاید آپ کو دیکھ کے وہ لوگ دروازہ نہ کھولیں، میں آ کے بتا دوں گی۔
جی
السلام علیکم سرور صاحبہ، میں ہوں، دروازہ کھولیں پلیز۔ شکریہ۔
ارے میری خدا، پتہ نہیں ان لوگوں کو اور کیا چاہیے ہم سے۔ یہ ظالم خاندان، یہ قومی اشقیا، آخر ہمارا پیچھا کیوں نہیں چھوڑتے ہیں؟ ہماری ساری مصیبتیں انہی لوگوں کی وجہ سے ہیں۔
سلام سرور صاحبہ۔
وعلیکم السلام فاطمہ۔ یہ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ان کو کس لیے لائی ہو اپنے ساتھ؟ باہر باہر نکالو ان کو۔
سرور،
باہر جائیں۔
سرور،
باہر جائیں، میں کہتی ہوں کہ باہر جائیں آپ لوگ۔
بات سنیں، دیکھیں، لیکن مجھے معلوم ہے
سرور مر گئی۔ کوئی سرور مرور نہیں، سرور مر گئی ہے، کوئی نہیں۔ فاطمہ صاحبہ، آپ ان کو یہاں کیوں لائی؟
تھوڑا سا ان کی بات سنیں نا، تو آپ کو بھی سمجھ میں آئے گا لوگ کیوں آئے۔
اجازت اجازت دی تھی تبھی تو یہ حال ہوا ہے۔ میرے شوہر کی جان کافی نہیں تھی جو اب بیٹی کی زندگی بھی برباد کرتی۔
میں شرمندہ ہوں سرور بہن، تمہیں ایک ساتھ کھائے ہوئے نان و نمک کی قسم، میرے بہزاد کو معاف کر دو۔
معاف کر دو؟ آپ میری جگہ ہوتی تو کیا معاف کرتی فاطمہ صاحبہ؟ جاؤ
سرور، میری بہن پلیز۔
تائی جان، آپ کو سارا قصور بہزاد کے ذمہ نہیں ڈالنا چاہیے۔ آخر تائی جان کی موت سے بہزاد کا کیا تعلق ہے؟
تعلق ہے؟ بہزاد نے اپنے باپ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے پہلے میرے شوہر کو مارا، پھر میری بیٹی کی زندگی تباہ و برباد۔
غلط سوچ رہی ہو سرور، بہزاد نے کبھی ایسا نہیں سوچا تھا، کبھی وہ یہ نہیں کرنا چاہتا۔
تم اس کا دفاع مت کرو کہ یہ ساری مصیبتیں تمہاری وجہ سے ہی جھیل رہی ہوں۔ ایک ہی دفعہ جو میں نے تم پہ اعتماد کیا میری 7 پشتوں کے لیے کافی ہے۔ اس وقت میں خائن داماد کی ساس اور ایک نادیم بیٹی کی ماں ہوں۔ آج کے بعد ان لوگوں کو میرے گھر میں پاؤں رکھنے کا حق نہیں ہے، مگر یہ کہ میں مر جاؤں۔
سرور بہن، میں صدقے جاؤں، تمہاری آؤ نفرین مجھے لگے، میں تمہاری پاؤ پڑتی ہوں، بس اتنے اجازت دو کہ میں باہر
سے سامنے مگر مت کی آنسو مت بہاؤ۔ باہر کو تم سے کوئی کام نہیں ہے۔
باہر نہیں چاہتی، آپ نہیں چاہتی تائی جان۔
وہ بھی نہیں چاہتی، میں بھی نہیں چاہتی، آخر آپ لوگ ہماری جان کیوں نہیں چھوڑتے ہو؟
سرور بہن، میری جان، آپ اس فیملی کی بزرگ ہیں، آپ کو اپنی بزرگی دکھانی چاہیے۔
ये सारे मसाइल आपने खड़े किए हैं फातिमा, आप भी बहजाद से कम कसूरवार नहीं है।
ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे जब पता चला कि बहजाद ने पहले से शादी कर रखी है।
आपको भी इल्म था फातिमा साहिबा?
मुझे उस वक्त पता चला कि जब हिसाम फौत हो चुके थे और बाहर और बहजाद रिश्ते अजदवाज में मुंसलिक हो चुके थे।
तो हमें क्यों नहीं बताया फूफी जान?
मैं तुम लोगों से क्या बताती, क्या कहती मैं तुमसे? उस वक्त भी इसी वक्त की तरह से मुर्द इल्जाम ठहराई जाती कि इन बच्चों की जिंदगी खराब करना चाहती हूँ।
तो सबको इस किस्से का पता था सिवाय मेरे।
हकीकत यह है कि जब मनुचेहर ने मुझे किस्सा सुनाया, मैं आके सबको बताना चाहती थी, हत्ता सुरूर तुम्हें भी। लेकिन जिस दिन हिसाम का इंतकाल हुआ, बहजाद अस्पताल में मेरे पास आया और मुझसे इल्तिमास करने लगा कि मुझे बहार से बहुत मोहब्बत है, अपनी जिंदगी से प्यार है। मैं जानती थी कि बहार भी बहजाद को बहुत चाहती। मैं नहीं चाहती थी कि उससे उसकी मोहब्बत छीनो।
तो मनु चेहर भी जानता था, दोनों एक ही थाली के चट्टे।
बस कीजिए ताई जान, अपनी इज्जत का ख्याल रखें। हम चुप हैं तो आप भी बोले जा रही हैं। भूल गई हैं कि अगर मैंने और बहजाद ने एक उम्र बगैर बाप के गुजारी है तो उसकी वजह ताया मरहूम है।
खुदा उसे वही देता है। प्लीज जाइए बाहर, निकलिए। मैंने कहा ना निकल जाएं, घर से निकले। सुरूर मर गई, बाहर निकलो।
छोड़िए अम्मी, चलते हैं। पता नहीं कहाँ की कहाँ से मिला रही है।
बदहाल लड़की, बात करने की तमीज तक नहीं है।
क्या कहा आपने?
वही जो तुमने सुना। मुझे समझा रही हो?
आपको
बदतमीज की बदले हाथ लड़की,
पता नहीं अपने आप को क्या समझती है।
मुझे अफसोस है सुरूर, सब पर अफसोस है। बाहर बेटी, मैं जानती हूँ कि तुम घर में हो और मेरी आवाज सुन रही हो। मैं इंतजार करूंगी, मुझे फोन करो, तुमसे बात करनी है।
मेरे पास मसाइल से निकलने के लिए हमेशा एक रास्ता होता है, हत्ता उस वक्त भी जब डेड लॉक पर पहुंच जाता हूं। कभी कभी मुझे कमतर न समझना। मुझे बचपन से ही गुत्थियां सुलझाने का शौक था, इसीलिए फौरन ही मसले का सुराग लगाकर उसे हल कर लिया करता था। अब भी एक रास्ते से ना हो सका तो दूसरे रास्ते से, नहीं तो तीसरे से। आपको ज्यादा तफसीलात जानने की जरूरत नहीं है, जब काम खत्म हो जाएगा तो सब कुछ बता दूंगा। यकीन मानो तो तुम वही शख्स हो जिसकी जुरात को मैं तारीफ करता हूं। ठीक है ठीक है, और तारीफ नहीं करूंगा, खुशखबरी का मुंतजिर हूं। फिलहाल खुदा हाफिज।
वालेकुम
सलाम बेटा, सदके जाऊं तुम पर, कहां थे? मैं बहुत परेशान थी, कम से कम एक फोन तो कर लेते।
मैं कुछ दिन अकेले रहना चाहता था।
नहीं, अब हम तुम्हारे लिए पराए हुए हैं, वरना उस गुस्ताख लड़की से तुम्हारी शादी से बेखबर ना होते।
अम्मी आपने खुद ही कहा था कि जाओ, मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहती।
हाँ कहा था क्योंकि मैं तुमसे नाराज थी, लेकिन तुम मेरे बेटे हो, मेरे दिल का टुकड़ा हो, क्या मैं इतनी आसानी से तुम्हें छोड़ सकती हूँ?
मैं आपको अपने मसाइल में उलझाना नहीं चाहता अम्मी।
तुम्हारे मसाइल हमारे मसाइल भी हैं। अच्छा किया जो वापस आए, ऐसे मौकों पर बड़े बेहतर तरीके से विसातत कर सकते हैं।
एक बात कहूँ, नाराज नहीं होना बहजाद प्लीज, मैं भी अगर बाहर की जगह होती तो यही सब कुछ करती।
बस करो लड़की, ये कैसी बातें कर रही हो? इसके जख्मों पर नमक मत छिड़को, कोई हल निकालो हमारे लिए।
क्या करें आप बताएं, दोबारा जाके उनके सामने गर्दन झुका लें अपनी?
कोई जरूरत नहीं है, वहां जाके दोबारा अपनी बेइज्जती नहीं करवाना है।
मैं तुम्हारी खातिर हर इहानत सहने को तैयार हूँ, जरूरत हुई तो जाके बाहर और उसकी माँ के पाँव पर पड़ूंगी, इतना रोऊंगी और इल्तिजा करूंगी कि वो हम लोगों को माफ कर दे।
अम्मी कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना मसला खुद हल कर सकता हूँ। इस वक्त यहाँ इसलिए आया हूँ कि कुछ अरसे रहूं और घर ढूंढ लूं, अलबत्त अगर आपको कोई एतराज ना हो।
ये क्या कह रहे हो, ये तुम्हारा अपना घर है, जितना चाहो यहाँ रह सकते हो मेरे बेटे।
بہزاد میرے بھائی، کوئی بھی انسان کی اپنی فیملی جیسا نہیں ہو سکتا، لیکن کاش اپنی زندگی خراب کرنے سے پہلے مجھ سے اور امی سے مشورہ تو کر لیتے۔
لیکن معاف کرنا سوریا بہن، یہ آپ لوگ تھے جنہوں نے میری زندگی خراب کر دی۔ اگر اسی وقت مخالفت کے بجائے میری بات مان لیتے تو میں چپکے سے جا کے شادی کرنے پر مجبور نہیں ہوتا۔
اپنی غلطی کو ہمارے کھاتے میں مت ڈالو۔ میں نے اور امی نے اسی وقت تمہیں اچھی طرح سے بتا دیا تھا کہ یہ لڑکی ہمارے خاندان کے لائق نہیں ہے، لیکن تم نے اپنی دل کی بات سنی اور اب خمیازہ بھگت رہے ہو۔
ٹھیک ہے سوریا، ٹھیک ہے، میں نے غلطی کی ہے، میں خود ہی اس کا خمیازہ بھگتوں گا، تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟
واہ بہزاد صاحب، خوش آمدید۔ ارے بھائی، یقین کرو یہ گھر تمہارے بغیر بالکل بے رونق تھا۔ تمہارا بہت بہت
شکریہ۔ جس کی ہے اسی کو مبارک ہو، بس اتنا جان لو کہ خوشامد کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔
ارے یار، میری سمجھ میں نہیں آتا میں نے کیا گناہ کیا ہے کہ میرے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کر رہا۔ بھیا، سرور صاحبہ کو اپنے کارخانے کی تجوری کی چابی چاہیے اور غصہ مجھ پر اتارو تم۔
نہیں، شب بخیر۔
کھانا کھایا ہے بیٹا؟
نہیں شکریہ، بھوک نہیں ہے، میں اکیلے رہنا چاہتا ہوں۔ شب بخیر۔
شب بخیر۔ ارے چھوڑیے، جانے دے بیچارے کو، اتنا اس کے پیچھے مت پڑیے، اکیلا رہنے دیجیے۔
کتنا دبلا ہو گیا ہے، آنکھوں کے نیچے حلقے پڑ گئے ہیں، تمہارے خیال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟
کیا کریں گے اب آپ بتائیں، دیکھ تو لیا ہے کہ آج انہوں نے ہماری کتنی بے عزتی کی۔
تنہائی کی سختی کا اس وقت پتا چلا جب میں نے یہ دیکھا کہ کھیت کے پتلے نے آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے کوے سے کہا، جتنی مرضی مجھے ڈھونگے مارو لیکن مجھے اکیلا مت چھوڑو۔ جانتا ہوں میں نے غلطی کی ہے، لیکن پلیز مجھے ایک موقع دو کہ ازالہ کر دوں، میرے ساتھ رہو اور اس بحران سے نکلنے میں میری مدد کرو۔ باہر میں کسی بھی قیمت پر تم سے جدا نہیں ہوں گا، حتیٰ اگر برسوں انتظار کرنا پڑے۔ تمہاری طرف سے اپنے معاف کیے جانے کا انتظار کروں گا، اپنے چھوٹے دل کی وسعت کے برابر تمہیں یاد کروں گا۔ شاید میرا دل چھوٹا ہو، لیکن ہر کسی کا دل اس کی پوری زندگی ہوتی ہے۔
مجھے یاد ایک دفعہ سے لکھا تھا، اپنے چھوٹے دل کی وسعت کی برابر تمہیں یاد کرتا ہوں۔ شاید میرا دل چھوٹا ہو، لیکن ہر کسی کا دل اس کی پوری زندگی ہوتی ہے۔
محترمہ بہار فروزان فر صاحبہ، عدالت کے روبرو اپنا مدعا بیان کریں۔
قاضی صاحب، مجھے طلاق چاہیے۔
اس درخواست کے لیے کوئی وجہ بیان کر سکتی ہیں؟
جھوٹ۔
بس اتنا؟
ان صاحب نے مجھ سے اپنی پہلی شادی چھپائی ہے اور میرے اعتماد سے غلط فائدہ اٹھایا ہے، میرے احساسات اور میری شخصیت کو ٹھیس پہنچائی ہے، آپ کے خیال میں یہ کم ہے؟
نہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی طلاق کے لیے کافی نہیں ہے۔
کیوں قاضی صاحب، آپ کو کیوں ایسا لگتا ہے کہ جو شخص اپنی بیوی کو مارتا ہے یا اس کے اخراجات کو پورے نہیں کر سکتا مشترکہ زندگی کے قابل نہیں ہے؟ تو اخلاقی ضابطوں کا کیا ہوگا اور میرے اعتماد کا کیا ہوگا کہ جو اس آدمی کے جھوٹ اور فریب کی وجہ سے ختم ہو گیا ہے؟ کیا ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟
دیکھیں میری بہن، جب طلاق کی درخواست دونوں کی طرف سے نہ ہو اور صرف زوجہ طلاق کی درخواست کرے، تو اس کو یا تو ثابت کرنا پڑے گا کہ زوجیت کا جاری رکھنا اس کے لیے عسر اور تنگی کا سبب بنتا ہے، یا یہ کہ عقد کے موقع پر طلاق کے لیے رکھی گئی شرائط میں سے کوئی شرط پوری ہو جائے، یا طلاق کا حق بیوی کو دیا گیا ہو۔ کیا آپ کے پاس ہے؟
ایک سوال ہے قاضی صاحب، اگر کسی مرد نے شادی سے پہلے ایسی کوئی ادعا کی ہو جو شادی کے بعد غلط ثابت ہو جائے، تو کیا اس عورت کو طلاق لینے کا حق نہیں ملتا؟
طلاق کا حق نہیں، لیکن ہاں فسخ کا حق بنتا ہے۔
کیا آپ مزید وضاحت کر سکتے ہیں؟
اگر شادی سے پہلے شوہر یا زوجہ کے لیے کوئی خاص صفت شرط رکھی گئی ہو اور نکاح اس کے صفت کے مطابق ہوا ہو اور بعد میں معلوم ہو جائے کہ اس شخص میں وہ صفت نہیں ہے، تو طرف مقابل عقد کو فسخ کا حق رکھتا ہے، جو کارروائی کے لحاظ سے طلاق سے مختلف ہے۔
लेकिन जनाब मेरी बीवी के बातें सही नहीं है।
सही है गाजी साहब, इन्होंने अपने माजी के बारे में मुझसे झूठ कहा है और जो औरत उनकी जिंदगी में थी उसको मुझसे छुपाया है।
नहीं जनाब, मैंने झूठ नहीं बोला है और छुपाया भी नहीं है, सिर्फ बताया नहीं है। अब अगर ये इसको छुपाना कहती है तो कोई बात नहीं, छुपाई भी इसलिए थी कि मैं तहदिल से नई जिंदगी शुरू करना चाहता था। अरे जनाब, शादी के पहले दिन इस खातून ने मुझसे कहा कि जिंदगी में झूठ मत बोलो, अगर ऐसी कोई बात हुई कि जिसका जानना मेरे हक में बेहतर ना हुआ तो कहो कि बेहतर नहीं है। जनाब, मैं अपनी बीवी को चाहता हूँ, इससे मोहब्बत करता हूँ और किसी भी सूरत में तलाक नहीं दूंगा।
इस सूरत में फरोजान फर साहब की बातों को मद्देनजर रखते हुए कि उन्होंने अपने किए से इजहार निदामत किया और आपसे और मुश्तरक जिंदगी से उनकी मोहब्बत के पेश नज़र मेरी आपसे गुजारिश है कि दरगुजर करें और मुश्तरक जिंदगी जारी रखें, वरना दोनों तलाक पर राजी हों, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं।
बहुत शुक्रिया।
क्या हुआ बाहर?
कुछ नहीं, जिद पकड़ा हुआ और कहता है तलाक नहीं दूंगा।
अरे ऐसी कैसे नहीं देगा, सोचता है जंगल में रह रहा है। अरे अरे अरे, है? मैं कानूनी तौर पर हक मेहर दरखास्त दायर करूंगी।
मैं इसके मेहर का एक एक पैसा अदा कर दूंगा लेकिन तलाक नहीं दूंगा।
इस खेल का आखिरी नतीजा सिर्फ वक्त को बर्बाद करना होगा, बेहतर होगा कि अपना वक्त भी जाया ना करो और हमारा भी, समझे तुम? उसे तलाक दो और ये भी बदले में हक मेहर माफ कर देगी, ठीक है?
आपकी मेहरबानी की जरूरत नहीं, मैं तलाक नहीं दूंगा।
अरे कैसे नहीं दोगे, यहाँ कानून की बालादस्ती है, मैं वकील का इंतजाम करूंगी। नमक हराम लड़का,
चीख क्यों रही है अम्मी, बेइज्जती करवा दी।
क्या इज्जत लगा रखी है तुमने, इस लड़के ने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। ए लड़के, तुम्हें इंसान बना के रहूंगी, देख लेना किससे पाला पड़ा है। और देखो वो चमचा भी आ गया, आओ चलो बेटा। अरे मेरी जान जैसी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी इसने।
अस्सलाम वालेकुम, जूही निगार साहिबा से सुना, फौरन यहाँ पहुँचा, माफ कीजिएगा, उस लड़के ने तलाक दी या नहीं?
नहीं, कहता है तलाक नहीं दूंगा।
अरे क्या मतलब तलाक नहीं देगा, कितना गैर जिम्मेदार इंसान है, कोई नहीं जो उससे कहे तुमने गलत किया, अपनी गलती मान लो, बार बार अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हो। अरे बाहर साहिबा, आप
बिल्कुल परेशान ना हो, बहजाद सर का झोड़ा भी हो तो आप उसे राम कर सकती हैं, उसकी बागडोर आपके हाथ में है, आप मेहर का मुतालबा कर लीजिए, वो घुटनियों के बल चलता हुआ आएगा और आके तलाक देखे जाएगा।
कुछ मालूम है तुम किसका घोड़ा हांक रहे हो?
आपका मतलब मैं आपकी तरफ हूँ।
तुम बहुत कुछ जानते थे लेकिन मुंह नहीं खोला।
मैं क्या जानता था सुरूर साहिबा, मैंने तो सब कुछ साफ साफ बता दिया। माफ कीजिए बाहर साहिबा, ये क्या कह रही?
मैं क्या कहूँ, बेहतर है कि आप आईने में देखें और ये सवाल खुद से पूछें।
बाहर छोड़ो उसे, आओ चले।
सर माफ कीजिएगा, ये तीसरा शोभा कहाँ है?
तीन। हाँ तीन हो गया।
किस फ्लोर पर है?
नहीं मालूम यार।
गुस्ताख लड़का, समझता है अब जबकि तुम्हारे अब्बू फोत हो गए तो जो जी में आएगा करेगा, तलाक नहीं दूंगा, ऐसा सबक सिखाऊंगी कि याद रखेगा, बेचारा करके रहूंगी तुम्हें। अपने आंसू पोछ डालो मेरी बेटी, तुम्हारी माँ भी जिंदा है, मैं उसे तलाक दिलवा के रहूंगी। तुम्हारी अपनी भी गलती है, तुम उस लड़के के सामने तुमने बहुत छोटा किया अपने आप को। अगर उसी वक्त जब मैंने इसरार किया था कि हक मेहर को विलादत के साल के मुताबिक लिखवा लो तो इस वक्त ये लड़का हमें इतना तंग ना करता। फिर भी खुदा का शुक्र है कि मैं उस वक्त डटी रही और 500 सिक्कों का मेहर रखवाया, वरना वो एक डीली मिस्री की ओर गुलदस्ता हाथ में पकड़ा देता और चलता बनता है, तो फिर हम क्या करते?
बस करें अम्मी, खत्म करें अपनी बातें, आपकी ये बातें मुझे और ज्यादा गुस्सा दिलाती हैं।
लीजिए तनावल फरमाइए।
शुक्रिया, जहमत किया आपने, शुक्रिया बहुत बहुत,
चलता हूँ, खुदा
खुदा हाफिज।
अस्सलाम वालेकुम।
अलैकुम अस्सलाम।
बैठे प्लीज।
بہت ہی خوبصورت گھر ہے.
شکریہ. مرحوم ڈاکٹر نے یہ گھر میرے لیے چھوڑا ہے.
واہ,
آپ تو بعض لوگوں کی طرح یہ نہیں سمجھ رہے کہ میں نے پیسے کی خاطر ان سے شادی کی.
اگر کہو گی کہ اس سے محبت کرتی تھی تو میں بالکل یقین نہیں کروں گا.
پہلے مجھے بھی یقین نہیں آ رہا تھا, لیکن ڈاکٹر اتنے مہربان اور پیارے انسان تھے کہ وہ ان کے پاس کچھ نہ بھی ہوتا تب بھی میں ان سے شادی کر لیتی.
افسوس کہ موت نے موقع نہیں دیا کہ مزید اچھی زندگی کا مزہ لیتا. افسوس. ہما صاحبہ اور سینا نہیں ہے؟
وہ آج کل بہت مصروف ہے. ہما کے لیے ایک بوتیک بنایا ہے, سینا اور اس کا گروپ بھی آج کل میں اپنا ایک البم ریلیز کرنے والے ہیں. میں نے ہی اس کو اسپانسر کیا ہے.
تو لگتا ہے کہ سب کچھ بالکل تمہاری مرضی کے مطابق چل رہا ہے.
اس سے بہتر بھی ہو سکتا ہے, حتیٰ تمہارے لیے.
دیکھا جائے گا. یہ آپ کے لیے.
بہت شکریہ. اچھا, اور کیا حال, کچھ کر سکے آپ یا نہیں؟
صبر کرو.
ہیلو, السلام علیکم, کیا حال ہے؟
فروزان فر صاحب, کیا آپ کو پیسہ برا لگتا ہے؟
نہیں, وہ کیوں؟
تو اپنا لون لینے کیوں نہیں آ رہے ہیں؟
کیا لون کا انتظام ہو گیا ہے؟
جی
بالکل تیار ہے, صرف آپ کو بینک آ کے کاغذات پہ دستخط کرنے ہوں گے تاکہ وہ چیک رافی کے حوالے کرے.
تمہارے منہ میں گھی شک کر, کب آؤں بینک؟
میں اس وقت وہاں جا رہا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہوا تو فون کر کے ٹائم بتا دوں گا.
ٹھیک ہے.
پیشی کا کیا بنا, طلاق دی اسے؟
نہیں, طلاق نہیں دی, لیکن حق کے مہر دینے کو کہا ہے. طلاق بالکل نہیں دوں گا.
ہر کوئی اپنے کام کا خود مالک ہے, لیکن ٹوٹے ہوئے شیشے کو جوڑا نہیں جا سکتا. آپ دونوں کے درمیان فاصلہ بہت ہے, تم دوبارہ سے حالات کو معمول پر نہیں لا سکتے. سمجھدار ہوئے تو طلاق دے دو گے.
ارے, ہماری عقل تو بہت عرصے سے ٹھکانے پہ نہیں ہے.
میری غلطی کو تم تکرار نہیں کرو. عورتوں کے ساتھ زبردستی زندگی نہیں گزاری جا سکتی, ان کا دل تمہارے پاس ہونا چاہیے. ایسی صورت میں موت کے بعد بھی تمہاری وفادار رہیں گی. یہ نصیحت نہیں, تجربہ ہے. کیڑا لگے دانت کو نکال پھینکنا چاہیے, ورنہ ایک رات اچانک حلق میں جا کے تمہاری سانس بند کر دے گا.
بہت اچھا, ٹھیک ہے,
میں آپ کے فون کا انتظار کروں گا. اوکے, خدا حافظ.
میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ یہ کام کر سکیں گے.
تم ہمیشہ میرے بارے میں غلط سوچتی ہو, لیکن میں اپنا کام خوب جانتا ہوں. البتہ صرف ایک دفعہ تم سے دھوکا کھایا اور بیٹی کو اس کی ماں کے پاس باہر بھیج دیا.
تو بہت خیال رکھیے گا, ممکن ہے دوبارہ دھوکا کھا بیٹھے. یہ لیجیے. میری امی مرحومہ کہا کرتی تھی کہ ہر نیا کام کرنے سے پہلے اچھی نیت کرنی چاہیے. اچھی بات ہے, تمہیں بھی آتا ہے.
بہت مزیدار ہے.